भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। रुक्मिणी उवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्णविवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभाम् त्वय्यच्युता विशति चेतमपत्रपम्ये रुक्मिणी उवाच। रुक्मिणी ने लिखा है श्रुत्वा सुनकर गुणान विशेषताओं को भुवन सुंदर हे त्रिभुवन में सबसे अधिक सुंदर शृण्वताम सुनने वालों के ते आपके निर्विश्य प्रवेश करके कर्ण विवरही कर्ण छिद्रों से हरतः हर लेते हैं अंगतापम हृदय की जलन रूपम सौंदर्य दृशां आंखों का दृशिमतां आंख वालों के अखिलार्थ लाभम धर्म अर्थ काम मोक्ष सब प्रकार का लाभ त्वयि आप में अच्युता हे अच्युत आविशति प्रवेश कर रहा है चित्तम मेरा चित्त अपत्रपम निर्लज मैं मेरा श्रीपद श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ब्राह्मण ने स्वयं ही उस पत्र को खोला और खोल करके भगवान से बांचने लगे कहने लगे जो भी हो चाहे भगवान ने पत्र खोलकर उनको दिया या वे भगवान की आज्ञा से खोले दोनों एक ही बात है। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि भगवान ने कहा कि पत्र को खोलिए और पढ़िए तो ब्राह्मण स्वयं ही पत्र के मुद्रिका का उन्मोचन किए और पत्र पढ़ रहे हैं। तो रुक्मिणी जी ने सबसे पहले भगवान को संबोधन किया है भुवन सुंदर और इसके बाद अच्युत तो वे कहती हैं हे भुवन सुंदर ते गुणान श्रुत्वा मे अपत्रपम चित्तम त्वयि आविशति हे त्रिभुवन सुंदर आपके गुणों को सुनकर मेरा चित्त निर्लज हो गया है और आप में प्रवेश कर रहा है इसकी त्रपा चली गई है। त्रपा का अर्थ होता है लज्जा। कैसे गुण है श्री कृष्ण के इसके विषय में रुक्मिणी देवी कहती हैं श्रृण्वताम कर्ण विवरहे प्रविश्य अंग तापम हरतः गुणान जब आपके गुण किसी सुनने वाले के कान के रास्ते से हृदय में प्रवेश करते हैं तो उसके हृदय की चिंता समाप्त हो जाती है, उसका अंग ताप नष्ट हो जाते हैं। अंग ताप से तात्पर्य है हृदय ताप, हृदय कोई अंग बता रहे। इस संसार में प्रत्येक जीव आश्रय चाह रहा है, और कैसा आश्रय चाहता है, वह व्यक्ति बहुत सुंदर होना चाहिए, धनी होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए, जो सब समय सभी प्रकार के संकट में उसको सहारा दे सके और उसकी इच्छाओं को पूरा कर सके। और यह भी देखा जाता है कि इस संसार में व्यक्ति किसी न किसी को अपना आश्रय, अपना प्रेमास्पद मानता है, परंतु इस जगत में जो भी जीव है, व्यक्ति है, जैसे देवता आदि, कोई पूर्ण नहीं है। जो स्वयं पूर्ण नहीं है तो दूसरे का वे आश्रय क्या बन सकते हैं। यहां तक कि ब्रह्मा जी, भगवान शिव, इंद्र आदि सब देखा गया है कि अभाव में है, इनको आवश्यकता पड़ जाती है, तो सब तरह से परिपूर्ण है भगवान श्री कृष्ण, सब तरह से परिपूर्ण है। इसीलिए भगवान ने गीता में बार बार इस बात को कहा है कि मैं ही जीवों का एकमात्र सुहृद हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही यज्ञों का भोक्ता हूं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। गीता में भगवान यह बारंबार प्रयास कर रहे हैं कि अर्जुन यह समझ जाए, अथवा अर्जुन के अनुसार सभी लोग ये समझ जाए कि कृष्ण ही बंधु हैं, कृष्ण ही माँ हैं, पिता हैं, भाई हैं, गुरु हैं, सब कुछ कृष्ण है, सुहृद है। इस बात को भगवान बारंबार कह रहे हैं, पिता हमस जगतो माता धाता पिता मह। एक बार कहते हैं, गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम, मैं ही सब कुछ। तो श्री भगवान की यह विशेषता है, उनमें अनंत धन है, अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है, अनंत सौंदर्य है, अनंत दया है। तो ऐसे प्रभु के गुणों को जब कोई व्यक्ति सुनता है, खासकर कान के रास्ते से जब ये गुण हृदय में प्रवेश करते हैं, तो वह व्यक्ति इस चिंता से बिल्कुल मुक्त हो जाता है कि हमारा कौन है। केवल पालन करने वाला ही नहीं, प्रेमास्पद भी सब तरह से। जिस प्रकार से इस जगत में कोई माँ है तो माँ किसी बच्चे से प्रेम करती है, स्नेह करती है, लेकिन ऐसा बच्चा जो सदा बच्चा रहे किसी माँ का, इस जगत में यह असमंजस उत्पन्न कर देगा। यदि बच्चा बड़ा न हो और हमेशा बच्चा रह जाए तो माँ भी उब जाएगी कि ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन अपराकृत जगत में श्री कृष्ण जैसे माँ यशोदा के बच्चा है, तो बच्चा ही है, अनंत काल तक ऐसे ही रहेंगे, और वहां कोई घुटन नहीं है, उबन नहीं है, बल्कि नित्य नया नया रस का अनुभव होता है बच्चे को प्यार करने में। माँ दूध पिलाती है, वो अनंत काल तक दूध पिलाएगी, अनादि काल से दूध पिला रही है, और भगवान के साथ यह संबंध माँ और पुत्र का ये रहेगा अजर अमर। इसी तरह मित्र का संबंध है वो रहेगा, स्वामी सेवक का संबंध है वह रहेगा, और जरा विचार कीजिए कोई परिवार ऐसा हो जिसमें कभी कोई वृद्ध न हो, कभी कोई मरे न, किसी को कोई रोग न हो, अभाव न हो, तो कितना अच्छा माना जाएगा वह परिवार इस जगत में। तो भगवान तो ऐसे संबंधी हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कि वे यदि मिल जाते हैं, चाहे किसी भी रूप में, यदि कोई स्त्री है उसको पति के रूप में भगवान मिले, या कोई आर्त व्यक्ति है, भगवान उसको पालक के रूप में मिले, स्वामी के रूप में मिले, या कोई मित्र के रूप में चाहता है तो मित्र के रूप में मिले। जो भी गुण देखना चाहे भगवान में सब हैं, तो जो कोई व्यक्ति श्री कृष्ण के गुणों को सुनता है तब उसका हृदय ठंडा हो जाता है, उसके हृदय की जलन समाप्त हो जाती है, समझ जाता है मैं बहुत ही अच्छा मित्र पाया हूँ, अच्छा स्वामी पाया हूँ, और कभी भी ये संबंध टूटेगा नहीं, मैं सदा के लिए सुखी हो जाऊंगा और उनकी नित्य सेवा करता रहूंगा। तो इस तरह से जो एक अनाश्रयता का या अनास्था का जो ताप है इस संसार में वो मिट जाता है। खास करके रुक्मिणी देवी अपने लिए यह बात कह रही हैं कि जैसा उन्होंने आगे कहा है कि मैं विवाह के योग्य हो गई हूं, और जो कन्या विवाह के योग्य होती है तो उसके हृदय में एक चिंता रहती है कि हमको पति मिले, कैसे पति मिलेंगे, और माता पिता के भी हृदय में चिंता होती है। रुक्मिणी देवी के लिए यह अर्थ है, कोई भी कन्या चाहेगी कि हमें बहुत गुणवान पति मिले, वर मिले, तो हे प्रियतम, जब से मैंने आपके गुणों को सुना है तब से मेरी चिंता बिल्कुल समाप्त हो गई है, और मैंने यह निश्चय कर लिया है कि मैं आपको पति बनाऊंगी, मैंने वरण कर लिया है, और इस विषय में मुझे मेरे माता पिता के अनुमति की या समाज की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके गुणों ने मेरे चित्त को निर्लज बना दिया है। मैं अब किसी की अपेक्षा नहीं कर सकती कि वह व्यक्ति परमिशन दे या न दे, मैं इसकी परवाह नहीं करूंगी। चित्तम अपत्रपम अपगता त्रपा जस्मात् अपत्रपम, हमारे चित्त की लज्जा चली गई है। यह लज्जा की बात है ना, कोई लड़की पत्र लिखे किसी व्यक्ति को और उस पत्र के लेखन में उसके पिता की अनुमति नहीं है, माँ की अनुमति नहीं है, यहां तक कि सखियों की अनुमति नहीं है, किसी की नहीं, तो रुक्मिणी जी को ऐसा लग रहा है कि वह जो मैं पत्र लिख रही हूं तो एक सामाजिक शिष्टाचार के विरुद्ध आचरण कर रही हूं, ये निर्लज्जता का आचरण है। लेकिन इसमें रुक्मिणी जी अपने हृदय को दोषी नहीं मान रहे, अपने चित्त को दोषी नहीं मान रहे, कृष्ण का गुण ऐसा है जो निर्लज बना दिया। गोपियां ऐसे ही भगवान से कहती हैं कि काष्ट्यंग ते कल्पदायत मूर्छिते न सम्मोहितार चरिता न चले त्रिलोक्या त्रैलोक सौभग विदम च निरीक्ष रूपम जदगो द्विज ध्रुव मृग पुलका ने विभ्रम। हे प्रियतम, कौन ऐसी स्त्री है इस जगत में, तीनों लोक में, काष्ट्रंग ते कल्पदायत मूर्छिते न, आप बताइए कौन ऐसी ज्योति स्त्री है तीनों लोकों में, कोई भी देवताओं की स्त्री हो, पतिव्रता हो, कुछ भी, कौन ऐसी है जो आपके बांसुरी के गीत को सुन करके और आपके इस रूप को देख करके वेद मर्यादा से विचलित न हो जाए, कौन ऐसी? भगवान के सामने कोई इसका जवाब नहीं था कि वो कहे कि अरुंधति है, अनसुईया है, वे लोग नहीं मोहित हो सकती हैं, जो भगवान कह सकते थे। गोपियां कहते हैं कौन ऐसी स्त्री है जो आपके बांसुरी के गीत को सुन ले और आपको देख ले आंख से और फिर भी उसको धैर्य रह जाए, वो अविचल रह जाए, आप में प्रेम न करे, ऐसी कौन स्त्री है? अरे मनुष्यों की और देवताओं की बात छोड़ दीजिए, जद गो द्विज मृगा पुलकानी अभिभ्रम, आपके बांसुरी के गीत को सुनकर आपको देख करके गाय, वृक्ष, पक्षी ये पुलक धारण करते हैं, इनको पुलक होता है, हमने देखा है, तो हमने क्या गलत किया है यदि हमने अपने परिवार का त्याग करके आपसे प्रेम किया है? हम तो गोप जाति की हैं, आप भी गोप हैं, और एक बार नहीं हजारों बार हमने आपका बांसुरी सुना, आपको देखा, तो हम यदि घर को छोड़ करके आपके चरणों में आई हैं, हम आपकी दासी बनी, इसमें क्या आश्चर्य है। कोई भी स्त्री जिसके साथ आपका कोई संबंध नहीं है, देवी दैत्य कहीं की स्त्री हो, वो अपने अनुरक्त हो सकती है। तो हे प्रियतम, आपके गुणों में ये विशेषता है, आपकी विशेषता है कि चित्त को ऐसा बना दिया। रुक्मिणी जी कहते हैं, मेरा चित्त पूरा निर्लज हो चुका है, आप में प्रवेश कर रहा है, तो ही आविशति का अर्थ है कि अब कुछ भी चिंतन नहीं कर रहा है, मेरे चित्त में केवल आप बसे हैं, मैं आपका चिंतन कर रही हूं। तो आपके गुणों को जब से मैंने सुना है तब से मेरा मन निर्लज हो गया है और आप में प्रवेश कर रहा है। आपके गुण सुनने वालों के हृदय में प्रवेश करके उसकी जलन मिटा देते हैं। तो और आपका रूप, रूपम दृश्यम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम, दो बात करें, एक तो आपके गुणों को मैंने सुना और आपके रूप को सुना, श्रुत्वा रूपम, यहां विक्रिया लगेगी क्योंकि अभी देखा नहीं है रुक्मिणी जी ने भगवान को, आपके गुणों को सुनकर आपके रूप को सुन करके मेरा मन सब कुछ भूल चुका है, केवल आप में प्रवेश कर रहा है। और हे प्रियतम, आपका रूप ऐसा है कि दृश्यमतां दृशम, आंख वालों के आंखों का अखिलार्थ लाभ, हम सारा लाभ हुआ ही है। यदि कोई आपको देख लिया तो उसके आंखों का सारा लाभ आप ही हैं, चाहे धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ। दृश्यमतां दृशम, आंख वालों के आंखों का सब लाभ, ऐसे कह सकती हैं, आंख वालों के आंखों का। तो इस संसार में जो भगवान ने आंख बनाया है, विशेषकर देवताओं की आंख और मनुष्यों की आंख, देखने के लिए ही, लेकिन आंखों का वास्तविक लाभ है भगवान को देखना। जब तक तो कोई व्यक्ति भगवान को नहीं देखा है, भगवान के सौंदर्य को नहीं देखा है, तो उसको आंख न देना देना दोनों एक समान ब्रह्मा जी के लिए हो जाएगा, बेकार आंख दी है। आंख है भगवान को देखने के लिए, इसके द्वारा सिद्ध हुआ कि भगवान का रूप है, बहुत अच्छा रूप है। जो लोग यह कहते हैं कि भगवान बिना रूप के हैं, बिना आकार के हैं, तो इसका मतलब वो स्वयं ही ब्लाइंड हैं, वो क्या देखेंगे। इस तरह का ज्ञान होना, इस तरह की धारणा करना कि भगवान का कोई रूप है ही नहीं, यह तो बहुत भारी अज्ञान है, वास्तव में बहुत बड़ा अज्ञान। जो भी पाप हो, जो भी दुराचार उन्होंने किया होगा, इसलिए इस प्रकार का विचार मन में आता है कि भगवान का कोई रूप नहीं। शास्त्रों में इस बात को कहा गया है कि जिनके मन में ऐसी धारणा होती है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, वे लोग वास्तव में एक नंबर के पापी हैं। बहुत बड़ा दुष्कर्म किया होगा तब इतनी दूषित चेतना है। सबसे सुंदर रूप वाले के विषय में कहते हैं कि उनका रूप है ही नहीं, इस तरह की बात कहते। तो भगवान ने आंख बनाया है देखने के लिए, लेकिन किसको देखें, किसको देखने से माना जाएगा कि आंखें सफल हो गई, धन्य हो गई। तो रूपम दृश्यम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम, आपका रूप ही सबसे बड़ा लाभ है। जो आपको देख लिया वो धन्य हो गया, सुखी हो गया, आंखें सफल हो गई। तो इसके द्वारा श्री रुक्मिणी जी यह कह रहे हैं कि हे प्रियतम, आपके गुणों को जब से हमने सुना है, मैं आपकी भार्या बनने के लिए, आपकी दासी बनने के लिए कृत संकल्प हो चुकी हूं, और मेरे मन में यह लालसा है कि कब आपको देखूंगी, मुझे कब नेत्रों का फल मिलेगा। लेकिन मैं इस तरह से बंधन में हूं कि आप कृपा करेंगे तभी मैं आपको पा सकूंगी। यह पत्र इस संदेश को व्यक्त कर रहा है कि भगवान को जीव पा सकता है भगवान की ही कृपा से, अपने साधन से नहीं पा सकता। रुक्मिणी जी ने स्पष्ट लिखा है कि आप आइए, जादवों की सेना लेकर के, सेनापतियों के साथ आप आइए, बहुत बड़ी सेना लेकर मत आइएगा, लेकिन मुख्य मुख्य सेनापतियों के साथ आइएगा। अभी भी मन में यह भय है कि प्रियतम अकेले आएंगे तो कहीं ये लोग कुछ कर ना दे। स्नेह है इस तरह का, जानती हैं कि ये भगवान है, परंतु फिर भी ये कही है कि सेनापतियों के साथ आइएगा, अकेले मत आइएगा, और यहाँ के राजाओं को परास्त करके मत करके हमें ले चलिए द्वारका। तो भगवान को भगवान की ही शक्ति से पाया जा सकता है। जीव में इतना ही पुरुषार्थ काफी है कि वह पुकारे कृष्ण को, बस और क्या कर सकता है। श्री रुक्मिणी जी का इतना बल था कि उन्होंने पत्र लिखा। यदि भगवान पहले से सब जानते थे और पहले से उन्होंने विवाह करने का संकल्प कर लिया था, जैसा आप लोगों ने सुना, रुक्मिणी जी के गुणों का वर्णन सुनकर भगवान ने यह मन में बांध दिया था कि मुझे रुक्मिणी से विवाह करना है, और ब्राह्मण से यह भी वे कहते हैं, अभी पत्र समाप्त होने पर भगवान कहते हैं कि हाँ, मैं जानता हूं कि रुक्मिणी मुझे बहुत पसंद करती है, और मैं यह भी जानता हूं कि रुक्मी ने मेरा विवाह रोक दिया है, लेकिन मैं उसी तरह से रुक्मिणी को लाऊंगा उन राजाओं को मथ करके, जैसे ब्राह्मण लोग काष्ठ को रगड़ करके और अग्नि उत्पन्न कर लेते, ऐसा कहा भगवान ने कहा है, मैं लाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। और तुरंत दारू को आदेश दिया कि मेरे रथ को तैयार करो, तुरंत ब्राह्मण से बातचीत हुई, और इसकी सूचना भगवान ने सेनापतियों को नहीं दिया, श्री बलराम जी को, अक्रूर जी को, या प्रद्युम्न तो अभी जन्मे नहीं थे, और लोगों को उन्होंने कुछ कहा नहीं, चल दिया अकेले। लेकिन बलराम जी को इस बात का पता लग गया कि श्री कृष्ण अकेले गया है जहां बहुत बड़ी सेना जुटी है, तो ये सेना लेकर पीछे से चले गए भाई के स्नेह में। बलराम जी जानते हैं कि परम पुरुष हैं, परम ईश्वर भगवान हैं, पर उनकी सुरक्षा के लिए वे सेना लेकर चले गए। तो श्री रुक्मिणी जी जैसा प्रयास करना चाहिए, भगवान से अपने मन के भावों को कहना, यह एक भक्ति है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने कहा है, प्रार्थना कई प्रकार की होती है, जैसे दैन्यमयी प्रार्थना, अपनी दीनता को भगवान से कहना कि मैं बहुत हीन हूं, दीन हूं, मैं आलसी हूं, मुझसे भजन नहीं हो पाता है, आप कृपा कीजिए। और कुछ है प्रार्थना होती है लालसामयी, लालसा, जैसे शिल नरोत्तम दास ठाकुर बहुत से पद लिखे हैं जिसमें अपनी लालसा व्यक्त करते, हरी हरी कबे मोर हरी वे सुदीन, कब मेरा सुंदर दिन आएगा, कब मैं ब्रज में जाऊंगा, यह देखूंगा, यह करूंगा, ऐसे सुखी होऊंगा। तो इस तरह से भगवान से निवेदन किया जाता है कि आप हमें अपना लीजिए। और वास्तव में हृदय से यदि कुछ कहा जाए कृष्ण से, तो उसको भगवान बहुत ध्यान से सुन लेते हैं और तुरंत पूरा करते हैं। मन में लालसा होनी चाहिए। रुक्मिणी जी ने जो पत्र लिखा, वो कितना दुख में थी, कितनी चिंता में थी, कितनी तत्परता से पत्र लिखा और सुरक्षित ढंग से उसे द्वारका पहुंचवाया, यह बात ग्रहण करने लायक है। साधन करना चाहिए, लेकिन साधन में मन का अभिनिवेश बहुत आवश्यक है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल रोने का अभिनय करते हैं, ये करते रहते हैं, ऐसे ही जानते हैं वो भी कि हम झूठा कर रहे हैं, और माँ भी जान जाती है कि ऐसे ही रोता रहता है झूठ मूठ, तो इसलिए वो बच्चे को उठाने नहीं आती है, जानती है कि ऐसे ही आदत है। लेकिन सचमुच के बच्चे यदि रो दे तो सब काम छोड़ करके आकर के बच्चे को उठाती है, दूध पिलाती है, सहलाती है, उसे सुखी करती है, देखा गया। तो कृष्ण भी खूब जानते हैं कि ये जप कैसे हो रहा है, ये सही में रो रो करके हो रहा है कि केवल नियम पूरा करने के लिए हो रहा है। ये समझना चाहिए, वास्तव में क्वालिटी बढ़ानी चाहिए जप की या प्रार्थना की, भक्ति की तत्परता से। जिस दिन हृदय से ये आह निकलने लगे, हे कृष्ण अय नंद तनुज किम करम पतितम माम विस्मय भवाम उद्धव कृपया तो पाद पंकज अस्थि धूलि सदृशम विचिंतय। हे कृष्ण, मैं आपका किंकर हूँ, पर मैं इस भव समुद्र में जैसे तैसे गिरा हूँ। हे नंद नंदन, आप हमको यहाँ से उठाइए और अपने चरणों की धूलि के समान समझिए, हम पर विचार कीजिए, मैं बहुत दुखी हूँ। यदि वास्तव में हृदय से प्रार्थना निकले तो भगवान तत्काल उसका उत्तर देते हैं। इस पत्र में हृदय की लालसा ही, अपना कलेजा ही पत्र पर रख दिया गया है। एक तो रुक्मिणी जैसी कन्या के लिए पत्र लिखना किसी अनजान व्यक्ति को, यही काफी हो गया है। बहुत काफी, जिस कुल में जन्म ली थी और इतने बड़े सुंदर राजा के पास, सुशील राजा के यहाँ पत्र लिख रही, लेकिन वह जान रही है कि ये भगवान है, उनकी अद्भुत शक्ति है, और मैं अपने भावों को व्यक्त करूंगी तो प्रभु हमको स्वीकार करेंगे। भगवान का यह अभी एक गुण है, जय जथा माम प्रपद्यन्ते तस् तथा वह भजामि। हमको कोई जिस भाव से भजता है तो मैं भी उस भाव का उत्तर वैसे देता हूँ, यह भी गुण है। और रुक्मिणी ने भगवान के गुणों को सुना था, उसे विश्वास था कि भगवान उसकी बातों का सत्कार करेंगे, ऐसा नहीं कि उधर से पत्र लिख दे कि तुम निर्लज हो, ऐसा क्यों लिखा तुमने, ऐसा नहीं कर सकते। तो रुक्मिणी भगवान के गुणों पर प्रकारांतर से दोषारोपण कर रही है, गुण बता रही, लेकिन दोष जैसा कि आपके गुण ने हमारे चित्त को निर्लज बना दिया, आप इतने सुंदर हैं, इतने गुणवान हैं, आप कृपालु हैं, अतः हे प्रियतम, मैंने जब से आपके विषय में सुना है मेरा चित्त निर्लज हो गया और आप में प्रवेश कर रहा है। चित्तम त्वयि आविशति, आ का अर्थ सम्यक और विशति का अर्थ होता है प्रवेश, आपने मेरा चित्त पूरा पूरा प्रवेश कर रहा है। चित्त प्रवेश कर रहा है इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने जीवन में परम पुरुषार्थ के रूप में केवल आपको जानती हूं। अब मेरे दृष्टि के सामने, मेरे मन में कोई दूसरा विचार नहीं है, कुछ भी मेरे लिए सिद्धि नहीं है, आप ही परम सिद्धि हैं, आप ही परम साध्य हैं। और हम जैसे साधकों के लिए, भक्तों के लिए यह बात बहुत बड़ा संबल देता है, श्रुत्वा गुणान, आपके गुणों को सुन करके। यह निश्चित बात है कि जैसे भी हो, हम लोग भी एक पथ अपना लिए हैं, कृष्ण के पथ पर चल दिए हैं कि हम कृष्ण को पाएंगे। तो कृष्ण को पाने का तो कोई ऐसा उपाय नहीं है कि कृष्ण कहीं हैं, उनको हाथ पकड़ करके हम लावें या उनके चरण कमल पकड़ लें, लेकिन उनके विषय में सुनना यही है कृष्ण को पाने का पहला सोपान, सुनना। सुनने के बाद यदि मन कृष्ण में अविष्ट होने लगे तो भगवान में मन लगना और भगवान को पाना दोनों दो बात नहीं है, ये एक ही है। यदि मन भगवान में लगने लगा तो भगवान मिल जाएंगे, पहले वो मन में मिल रहे, फिर आंखों के सामने मिल सकते हैं, फिर बाहों में मिल सकते हैं। तो इस तरह से श्री कृष्ण को पाने कमन है। मान लीजिए गोपियां कुछ बोल रही है तो जो पढ़ रहा है वो भी सुनने जैसा ही है, गोपियों के मुख से सुन रहे हैं, मैत्रेय मुनि के मुख से सुन रहे हैं, या विदुर जी के मुख से सुन रहे हैं, ब्रह्मा जी के मुख से सुन रहे हैं। बहुत से वक्ता है उसमें, भगवान के भिन्न भिन्न गुणों को बोलते हैं। तो इस तरह से भगवान के गुणों को सुनने से अपना ताप दूर होता है, और इसी तरह से दूसरों को बताना चाहिए, बता बता करके कृष्ण का भजन करो, कृष्ण ही बंधु हैं, कृष्ण ही माँ हैं, कृष्ण ही पिता हैं, कृष्ण ही सब कुछ हैं। इस तरह से दूसरों को सुखी किया जा सकता है। तो रुक्मिणी जी ने सबसे पहले संबोधन किया भगवान को, भुवन सुंदर भुवनेशु सुंदर, या भुवना नाम सुंदर। भुवन का अर्थ होता है ब्रह्मांड, अथवा भुवन का अर्थ होता है प्राकृत अप्राकृत सारा लोक। जितने भी व्यक्ति हैं, हो चुके हैं आज तक सृष्टि में, और यहां तक कि परव्योम में, वैकुंठ में जितने भी पर्सनालिटी हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, सबसे अधिक सुंदर हैं भगवान कृष्ण। बल्कि इन्हीं के सुंदरता का एक लेश मात्र अन्यों में सुंदरता का संचार करता है। यह भगवान की पहली विशेषता है कृष्ण की, बहुत सुंदर। श्री कृष्ण के सुंदरता का वर्णन करने में बारम्बार कहा जाता है कि वे रूप सुधा सिंधु हैं, सौंदर्य के समुद्र हैं, कृपा के समुद्र हैं, दया के समुद्र हैं, और सबसे जो कुछ भी गुण है श्री कृष्ण में, सब समुद्र समुद्र समुद्र, अर्थात अनंत। समुद्र कहने का मतलब यह नहीं समझना चाहिए कि वह शास्त्र या वह भक्त भगवान के दया को सीमित कर दिया समुद्र कह करके। इधर प्रशांत महासागर चाहे अटलांटिक महासागर, इन सबकी सीमा है। हम लोग सीमित समुद्र को देखे हैं, यद्यपि एक व्यक्ति के लिए वो अभी असीम जैसा ही है, परंतु फिर भी नक्शे में देखते हैं कि एक सीमा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य की कोई सीमा नहीं, उनके दया की कोई सीमा नहीं है। इन दो गुणों ने सुखदेव गोस्वामी को भक्त बना दिया। भगवान ने पूतना का उद्धार किया, तो पूतना के उद्धार में भगवान ने अपनी कृपा की सीमा दिखा दिया, कितनी दयालु। जो स्त्री अपने स्तनों में विष लगा करके कृष्ण को मारने आई, उसको भगवान ने अपनी नित्य माँ बना लिया, धाय बना लिया। वास्तव में सामान्य बुद्धि से भगवान के इस कृपा को समझा नहीं जा सकता है कि अद्भुत भगवान है, अद्भुत कृष्ण है। माँ का वेश बना करके, गोपी का वेश बना करके आई थी, उस बच्चे को, 6 दिन के बच्चे को मारने के लिए जहर लगा, फिर भी उसको, अब भगवान रोज उसका दूध पीते हैं गोलोक, नित्य माँ बना दिए। लेभे गतिम भातृचितम पतन्यम कमवा दयालुम शरणम ब्रजे माँ। उद्धव जी कहते हैं कि ऐसा कौन दयालु है जिसकी मैं शरण लूं, कौन ऐसी दया किया है जो पुतना जैसी राक्षसी को अपनी माँ बनाया, यशोदा जैसा पद दिया, कोई नहीं है। तो भुवन में भगवान सबसे अधिक सुंदर, भुवन जैसे ऊपर के भुवन में ब्रह्मा जी का लोक है, जन लोक, महर लोक, तप लोक आदि है, सत्य लोक में वो रहते हैं, उसके बाद तप लोक, फिर जन लोक, महर लोक, ऐसे नीचे आते हैं। तो देवता बहुत अधिक सुंदर हैं। इंद्र लोक में जो लोग रहते हैं वो मनुष्यों की अपेक्षा बहुत अधिक सुंदर है। यहां तक कि सुतल तल आदि लोकों में जो दैत्य रहते हैं वे भी बहुत सुंदर है। किसी किसी लोक में नाग भी बहुत सुंदर है, केवल सर्प के ही आकार में नहीं रहते हैं, देवता के रूप में रहते हैं, बहुत सुंदर। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य हैं, मनुष्यों में सुंदरता का वर्णन नहीं पाया जाता है शास्त्रों में, ऐसा कहा जाता है। मनुष्यों को सुंदर माना ही नहीं गया है। जहां तक सुंदरता की बात आती है, तो जैसे उसमें हम लोग पढ़ते हैं जो भगवान मोहिनी रूप धारण किए, दैत्य लोग उनसे प्रश्न करते हैं मोहिनी से, तुम कौन हो? तो लोग स्पष्ट कहते हैं कि क्या तुम्हें देवी हो या दैत्य हो, दैत्या हो। टीका में बात लिखी गई, मानवी तो हो ही नहीं सकती हो, ये वहां पर निष्कर्ष निकाला गया, क्योंकि इतनी सुंदरी है मोहिनी, इतनी सुंदरी है कि देव समाज में ही ऐसा संभव हो सकता है। और खास करके जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लिए इस जगत में, जब वे आए, तो इसके पहले, आने के पहले जितने भी बड़े बड़े कवि विद्वान लेखक होते थे, वे लोग स्त्रियों के सौंदर्य का खूब वर्णन करते थे। भरा पड़ा है संस्कृत साहित्य, सब स्त्रियों को ही सुंदर मानते थे। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए ब्रज में, तो भगवान के सौंदर्य को देख करके कवियों ने, पहले के जो कवि कविता किए थे, उनको भी धिक्कारा और संकल्प किया कि अब हम कान पकड़ते हैं कि हम स्त्री के रूप का वर्णन नहीं करेंगे। उनको बिल्कुल फीका लगने लगा, भगवान के सौंदर्य के आगे स्त्रियों के रूप की कोई चर्चा थी ही नहीं, इतना सुंदर भगवान है। और दशम स्कंध में इस बात का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है, भगवान के रूप के आगे कोई किसी स्त्री को सुंदर देखे ऐसा संभव ही नहीं था। पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कोई हो, सब श्री कृष्ण के सौंदर्य पर लुब्ध थे, और श्री कृष्ण जहां भी जाते थे वहां उनको देखने के लिए लाखों लाख लोग जुटते थे, कोटि कोटि लोग। जब स्वर्ग में गए थे माता अदिति का कुंडल देने के लिए और इंद्र का छत्र देने के लिए, तो उस समय सारे देवता सब जगह से श्री कृष्ण को देखने के लिए जुटे थे, यह वर्णन है भागवत में। जब सुतल लोक में गए थे बलि के पास, तो वहां सब भीड़ जुटी थी सब देखने के लिए। मथुरा गए तो सब स्त्रियां, काम धंधा या बालक वृद्ध, कोई भी जहां थे वहीं से भाग देखने के लिए। हिरण के मारे बंद हो ही जात द्वार है, सारा सड़क जाम हो जाता था, द्वार में घर में प्रवेश करने को किसी को नहीं मिलता, इतना धक्का हो जाता था देखने के लिए कृष्ण को जहां जाते थे। इसीलिए महाराज युधिष्ठिर ने यह यज्ञ की योजना बनाया कि एक जगह कृष्ण को सब लोग आकर के देखें, सारे ब्रह्मांड राजसूय सभा में, यही उनकी इच्छा थी। और भीष्म पितामह ने अपनी स्तुति में कहा भी है कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जब लोगों ने भगवान कृष्ण के सौंदर्य को देखा, तो सब लोगों ने यही कहा कि ब्रह्मा के बाद एक सुंदर मनुष्य बनाने की जितनी कला थी सब यहीं खप गई कृष्ण को बनाने में, अब उसके पास यह नहीं, अब कला बची नहीं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा के बनाए हुए नहीं है, लेकिन फिर भी लोग के दृष्टि से बात कही जा रही, सब लोग यही कहते थे कि अब ब्रह्मा के पास इतना सुंदर बनाने की कला रही नहीं, सब खपा दिया इसी में, कृष्ण ने सब समाप्त कर दिया। ये भीष्म पितामह मरते समय भगवान के विषय में ये कह रहे हैं, सब लोग यही कह रहे थे, जो जहां था बस यही चर्चा करता था कि ओहो अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत अद्भुत सौंदर्य। और चाहे वो वृद्ध हो, बालक हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, सब यही वर्णन करते थे। श्रीमद् भागवतम में जगह जगह इन बातों का संकेत किया गया है। मथुरा में जब गए और कंस के मल्लशाला में जहां पर रंगशाला, जहां पहलवानों के साथ दंगल हो रहा था, जब वहां की स्त्रियों ने श्री कृष्ण को देखा वहां पहलवानों से लड़ते हुए, तो श्री कृष्ण के मुख पर कुछ पसीना आ गया था, मेहनत परिश्रम सूचित हो रहा था। तो मथुरा की स्त्रियां बहुत अफसोस करते हुए कहती हैं कि सखी, हम लोगों को जो इनका दर्शन मिला वह कुअवसर पर मिला, जब ये दोनों लड़के संकट में हैं, ये इनका घर नहीं है, ऐसे लोगों के साथ इनको किया गया जिनके साथ ही दंगल कर रहे हैं, इनके वास्तविक सुखमय मुख को और बिल्कुल स्वच्छंद लीला को गोपियां देखती हैं, कितनी धन्य। ब्रज में श्री कृष्ण को कोई चिंता नहीं रहती है, गाय चरा करके आते हैं जाते हैं, वन में खेलते हैं रहते हैं, लेकिन मथुरा में वे एक संकट के स्थान में फंसे हुए हैं। ये वहां की स्त्रियों का विचार था, बहुत अफसोस में बोलती। तो जो भी सौंदर्य भगवान प्रकाशित करते हैं वो तो परफेक्ट है ही, लेकिन जो ब्रज में उन्होंने अपना सौंदर्य प्रकाशित किया वो तो अद्भुत। कृष्ण करणामृत में बिलमंगल ठाकुर बहुत सुंदर वर्णन किए हैं, बहुत सुंदर। ये त्रिभुवन सुंदर शब्द आया है, इस पर मुझे ये सब बातें याद आ रही हैं कि तीनों लोकों में ऐसा सुंदर कोई है ही नहीं, अद्भुत सुंदर, किसी भी अंश में कोई तुलना नहीं की जा सकती किसी के साथ। और दूसरा संबोधन कर रही हैं अच्युत। अच्युत का अर्थ होता है जो अपने गुणों से, अपने सौंदर्य दया आदि गुणों से कभी च्युत नहीं होते हैं, तो अच्युत उनको कहते हैं। इस संसार में तो देवता या मनुष्य कोई भी हो, अपने गुणों से वो च्युत हो जाता है। आज बहुत सुंदर है लेकिन बुढ़ापा में उसकी सुंदरता च्युत हो जाती है। आज मान लीजिए उसके पास पैसा है, दया की वृत्ति है, दान देता है, कल स्वयं गरीब हो जाए तो दान क्या देगा, तो उसकी जो दान वृत्ति है च्युत हो जाती है, सौंदर्य चला जाता है, दया चली जाती है, पद चला जाता है, यहां तक कि शरीर ही चला जाता है, सब च्युत हो जाता है। लेकिन भगवान का तो जो कुछ भी है सब अच्युत है, और जितने दयालु अनादिकाल से हैं, पुतने का उद्धार करते समय जितने दयालु हैं अभी भी उतने ही दयालु हैं, उनके दया में कोई कमी नहीं, उनके सौंदर्य में कोई कमी नहीं, उनके धन में और उनकी सर्वेश्वरता में तो कोई कमी नहीं है कि कुछ लोग मिल करके उनको एक दिन ईश्वर के पद से हटा दे, ऐसा नहीं हो सकता। कोई चुनाव से भगवान नहीं गए हैं, इलेक्शन से नहीं गए हैं उस पद पर, उनका स्वभाव ही है कि वे ईश्वर। जैसे सूरज में प्रकाश मनुष्य की व्यवस्था से नहीं भरा गया है ना, कोई अमेरिकन सरकार या भारतीय सरकार मिल करके कोई पेट्रोल की सप्लाई थोड़े करते हैं कि सूरज में दाहकता शक्ति बनी रहे। सूरज में सहज प्रकाश है, स्वाभाविक प्रकाश है, कोई रेगुलेटर द्वारा या स्विच ऑफ करके उनके प्रकाश को कम नहीं कर सकता, और कभी जरूरत पड़े तो बढ़ा भी नहीं सकता। अभी इस देश में लोग कहते हैं अरे ये मई में इतना ठंडा पड़ रहा है, सूरज के प्रकाश में जैसे जो यथावत स्थिति है वही है, यह कोई मनुष्य की व्यवस्था नहीं है कि लास्ट मई में भी इस मई में भी इतना ठंडा पड़े। लोग सोचते हैं तो स्प्रिंग आना चाहिए, स्प्रिंग आने में क्यों देर किया है, सरकार से पूछना चाहिए क्या इसने देर किया है, मनुष्य तो कुछ नहीं कर रहा है इसमें, कुछ स्वाभाविक व्यवस्था होती है। भगवान श्री कृष्ण जो सर्वेश्वरेश्वर हैं, सबके ईश्वर हैं, स्वाभाविक ही हैं, ऐसा नहीं कि कुछ लोग मिल करके उनको ईश्वर मान दिए इसलिए उस पद पर हो गए और बाद में कह देंगे कि अब मत ईश्वर रहिए तो हट जाएंगे। वे अच्युत हैं, स्वाभाविक अनंत गुण श्री कृष्ण से निकलते रहते हैं, स्वाभाविक जैसे भगवान सूर्य से ताप और प्रकाश निकलते ही रहते हैं, स्वाभाविक निकलते रहते हैं। यदि एक दिन देखा जाए कि सूर्य से कितना ताप निकला, विचार करने पर कोई कोई तो डर जाएंगे कि भाई इतना ताप निकल रहा है तो सूर्य एक दिन ठंडा हो सकते हैं, इतना ताप निकलता है, पानी गर्म हो जाता है, पृथ्वी का ऊपरी भाग गर्म हो जाता है, हवा गर्म हो जाती है, लू चलने लगती है गर्मी के दिन में, देखते हैं हम लोग जैसे भारतवर्ष में इतनी गर्मी निकल रही है और निरंतर 24 घंटे निकल रही है, लेकिन अशेष तेज है। ब्रह्म संहिता में सूर्य को कहा गया कि अशेष तेज है, इनका तेज अशेष है, कभी शेष नहीं होगा, खत्म नहीं हो सकता है। जचक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणा राजा समस्त सुरमूर्ति रशेष तेज जस्या गया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंद माद पुरुषम तमहम भजानी। ये तो हम मनुष्यों को विचार करना चाहिए, सहज जो स्वाभाविक शक्ति है सूर्य की, उसके द्वारा ईश्वर का कुछ कुछ अध्ययन किया जाता है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। तो जैसे सूर्य में स्वाभाविक ताप है और प्रकाश है, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण में स्वाभाविक दया, स्वाभाविक सौंदर्य, स्वाभाविक सब कुछ। यद्यपि और विश्लेषण करके देखा जाए तो सूर्य में स्वाभाविक नहीं है, वह गोविंद का दिया हुआ है। सूर्य में जो प्रकाश है जो मनुष्य की व्यवस्था के अनुसार देखा जाए तो वो स्वाभाविक है, परंतु सूर्य की वास्तविक व्यवस्था पर विचार किया जाए तो वह स्वाभाविक नहीं है, वह कृष्ण का दिया हुआ है। प्रभास्मि सस्य सूर्य जस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, यह श्री कृष्ण ने कहा। तो श्री कृष्ण अच्युत है, उनमें सब कुछ स्वाभाविक है। श्री कृष्ण में चेतना स्वाभाविक है, ज्ञान स्वाभाविक है, बल सौंदर्य दया ऐश्वर्य सब कुछ स्वाभाविक है। वह किसी बाहरी व्यवस्था से संभव नहीं होता है, इसीलिए ये सब गुण श्री कृष्ण में रहते हैं। अतः उनका एक नाम है अच्युत, नाम ही है, बहुत सुंदर नाम है। अर्जुन ने सबसे पहले भगवान को यही कहा कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा कीजिए। सेना और उभयोर मध्य रथम स्थापित में चीतन, भगवान ने कहा क्यों, क्या जरूरत पड़ गई? तो कहा जावा देता निरीक्षे हम युद्ध कामान अवस्थित, मैं जरा देखना चाहता हूँ कौन कौन युद्ध करने आए। तो अच्युत शब्द बोल रहा है, उसमें उनका आशय ये है कि हमारे आदेश का पालन करेंगे, जरूर रथ को ले चलेंगे, तो आज्ञा दे रहे हैं। वो भी जानते हैं कृष्ण ईश्वर हैं, भगवान हैं, परंतु फिर भी सख्य भाव से कभी च्युत नहीं होते हैं, तो आदेश का पालन किए। रुक्मिणी जी के पत्र में इस शब्द का यह अर्थ है कि हे प्रभु, हे प्रियतम, आप में जो भी गुण हैं वे कभी समाप्त नहीं होते हैं, यहां तक कि कभी कम भी नहीं होते हैं, समाप्त होने की बात तो दूर रही। न वियंतिस्म कर ही चित, पृथ्वी माता ने कहा है कि श्री कृष्ण में जो भी गुण है न वियंति, कभी व्यय नहीं होते हैं, और देवताओं के पास जो गुण है वो व्यय होते हैं, खत्म होते हैं, खत्म होते होते सब समाप्त हो जाते हैं एक दिन पूरा पूरा, लेकिन श्री कृष्ण के जो भी गुण हैं सब अव्यय। तो आप हम पर कृपा कीजिए। इस पर मान लीजिए भगवान यह कहें कि अहो अति हार्ष्ट, एक कुलवती कन्या के लिए यह अति धृष्टता की बात है, इस तरह से पत्र लिखना है, अति हो गया। श्रीपा श्रीधर स्वामी जी पत्र के उपक्रम में बात लिखते हैं। हो इति अति धार्ष्टम्। कुल कन्या नाम इदम अति धार्ष्टम इति मां संकीर्त्या। यदि भगवान श्री कृष्ण कहें कि कुल कन्या के लिए जो ऊंचे कुल में जन्म ली है उस कन्या के लिए इस प्रकार से किसी से आग्रह करना माता पिता की जानकारी के बिना ये अति धृष्टता है, धृष्टता की सीमा हो रही है। तब ये कहती नहीं, यह मेरी धृष्टता नहीं है, आप अपने गुणों पर विचार कीजिए। तब वे कहते हैं का त्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्या वयो द्रविण धाम अभिरात्म तुल्यम धीरा पतिम कुलवती न वृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम। हे प्रियतम, आप इस संसार में कुल में शील में सौंदर्य में विद्या में यौवन में धन में और घर में अथवा प्रभाव में अपने ही तुल्य हैं, आपके समान दूसरा कोई नहीं है। यहां जितना भी नाम दिया गया है इन विषयों में श्री कृष्ण आत्मतुल्य हैं, श्री कृष्ण के समान कोई दूसरा नहीं है कुल की दृष्टि से देखा जाए तो। बहुत पावन कुल है जिस कुल में भगवान ने जन्म लिया है, अद्भुत पवित्र कुल है। श्रीमद् भागवत के नौवें स्कंध में यह सब लिस्ट दिया गया है। भगवान के पिता अनकदुंड भी वसुदेव जी जैसा चरित्र वास्तव में पूरे वैदिक इतिहास में मिलना बहुत कठिन है। इतने वे शुद्ध और महान पुरुष हैं वसुदेव जी, भगवान के पिता। भगवान श्री कृष्ण बहुत गौरव का अनुभव करते हैं जब उनसे कोई पूछता है आपका क्या परिचय है, तो कहते हैं मैं वसुदेव जी का पुत्र हूं, इसलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। भगवान को इस बात का गर्व होता है कि इनको इतने अच्छे पिता मिले हुए हैं, अद्भुत प्रतिभा और अद्भुत गुण है वसुदेव जी का, अनकदुंड भी का। तो यह तो डायरेक्ट पिता बने, लेकिन स्कूल में अगर देखा जाए तो अत्रि से प्रारंभ करके एक से एक श्रेष्ठ पुरुष हुए हैं। निर्मल चरित्र महाराज पुरुरवा जिनके पास स्वर्ग की सबसे श्रेष्ठ सुंदरी स्वयं ही इनके गुणों से आकृष्ट होकर आई थी, देवी होकर के एक मनुष्य के पास आई थी, ये सामान्य बात नहीं है। और अपने आप उसने प्रार्थना किया इनके पास रहने के लिए। तो स्वर्ग में रहने वाली देव समाज में रहने वाली स्त्री एक मनुष्य के पास आवे, तो पुरुरवा महाराज हुए इस स्कूल में हुए नहुष जिन्होंने इंद्र पद संभाला, इंद्र के पद पर काम किए। इस तरह से बहुत बहुत श्रृंखलाएं हैं, नौम स्कंध में पढ़ने लायक है। बहुत निर्मल चरित्र पुरुष हुए और शरणागत वत्सल शिवी महाराज जिन्होंने एक कबूतर के प्राण की रक्षा के लिए अपना शरीर भी काट करके दे दिया, मांस दे दिया था, इसी वंश में थे। और इस वंश में एक बार एक जगह पर देखते हुए वहां लिखा गया 14,000 ब्रह्मचारी रह गए और सबने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया, ये भागवत में लिखा गया नौम स्कंध में। और भी बहुत से महान पुरुष इस कुल में हुए हैं। तो रुक्मिणी जी सबसे पहले कुल शब्द का उल्लेख कर रहे हैं। कुल की दृष्टि से देखा जाए तो हे प्रियतम, आप अपने ही समान हैं, आपके समान दूसरा कुल है ही नहीं। तो कुल शील, शील का अर्थ होता है नम्र व्यवहार। शील का मुख्य अर्थ है बड़ों के प्रति नम्र होना, समान के प्रति मित्रता का व्यवहार करना और अपने से जो हीन है उन पर दया करना, इसको शील कहा गया। तो शील में श्री कृष्ण के समान कोई दूसरा नहीं है, आत्मतुल्य, अपने समान अनुपम है आप। अब तो भागवत के द्वारा ये उदाहरण दिया जाए तो उसमें बहुत देर लगेगी कि शील कहाँ कहाँ भगवान का प्रकट हुआ है, कहाँ कहाँ इनके शील प्रकट हुए हैं, शील गुण। अब सुने होंगे कि महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में आने वाले अतिथि ब्राह्मणों के चरण भगवान धोते थे, यह उनका शील है। उसी यज्ञ में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में उनकी पूजा हुई, सबसे श्रेष्ठ, और साफ घोषित किया जा रहा था कि ये परब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है, यह भी हो रहा था, लेकिन वहीं पर वह परमात्मा ब्राह्मणों के चरण धो रहा था। यह शील की पराकाष्ठा हो गई। भृगु जी ने भगवान के वक्षस्थल में लात मार दिया, लेकिन भगवान अपने बेड से शेषनाग के सज्जा से उतर करके भृगु जी के चरण पकड़कर सहलाने लगे कि आपके चरण कमल कोमल हैं, मेरा वक्षस्थल बहुत कठोर है, और हे ब्राह्मण, आपके आने की सूचना नहीं थी, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सका, मुझे क्षमा कर। इस प्रकार का शील कहाँ देखने को मिलेगा। तो श्री कृष्ण शील में भी अपने समान आप ही हैं, ऐसा कोई दूसरा नहीं। भगवान श्री राम की लीलाओं में शील इतना प्रकट हुआ है, इसलिए उनको शील निधान कहते हैं। जब महाराज दशरथ से बात कर रहे हैं, भगवान वन में जाते समय दशरथ जी उन्हें मना कर रहे हैं, प्रकाश मूर्छित पड़े हैं, एक्शन से ऐसा ही लग रहा है कि नहीं नहीं वन में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान समझाते हैं कि इस छोटी सी बात के लिए आप कितना दुख मानते हैं, आपके चरण कमल की कृपा से मैं बहुत शीघ्र निर्विघ्न वनवास पूरा करके आ जाऊंगा। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया, भगवान कहते हैं कि पिताजी आप इतना धर्म किए हैं, आप इतना दान किए हैं, आप इतना जीवों का उपकार किए हैं कि आपके कर्मों के कारण वन में मेरा कुछ भी नुकसान नहीं होगा। इस तरह बोल रहे हैं, आपकी महानता से, आपकी दानशीलता से मैं सफल रहूंगा और जल्दी लौटूंगा, आप मुझे आज्ञा दीजिए। यह है भगवान का शील। कभी अभिमान में भगवान श्री कृष्ण नहीं बोले, कभी भी। जब मुचकुंद महाराज से भेंट हुई गुफा में, तो मुचकुंद महाराज कहते हैं कि आप कौन हैं, आपके गोत्र का क्या नाम है, आपके पिता का क्या नाम है, और आपने क्या क्या कर्म किया है, कुछ बताइए। तो भगवान अपना नाम तो बताए, वासुदेव अपने पिता का नाम बताए, लेकिन क्या क्या कर्म किया है तो वहां पर बोलने में कहते हैं, काल नेमी रहतः कंस, जो पहले काल नेमी था वो कंस मारा गया, और एक दो और मारे गए, और हे महाराज आपकी तीक्ष्ण दृष्टि से यह मर गया। भगवान ने यह नहीं कहा कि मैं किया, कहते कंस मारा गया, ये हुआ ये हुआ, और आपके दृष्टि से ये मर गया। मैं लाया यहाँ पर और मैं बड़ा बुद्धि से मरवाया इसको, ये भगवान नहीं कह रहे हैं। वो शील पूर्वक बोल रहे हैं। महाराज मुचकुंद गदगद हो गए भगवान के इस प्रवचन से, बात से। कभी ऐसा नहीं कहे कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। एक बार तो भगवान ने कह दिया, ऐसे भगवत्ता भी तो प्रकट करनी थी, तो कहते हैं महाराज कोई व्यक्ति ओस के कणों को हो सकता है कि गिन दे, पृथ्वी के धूली को गिन दे, जल के कणों को गिन दे, लेकिन मेरे जन्म कर्म को गिनना असंभव है, फिर भी मैं कुछ बता रहा हूं। तो अपना जन्म वर्तमान जन्म बताया कि मैं वसुदेव जी का पुत्र हूं, इसलिए लोग मुझे वसुदेव कहते हैं, और काल ने में मारा गया और एक दो मारे गए, और कुछ भी भगवान ने नहीं कहा कि मैं पहाड़ उठाया, कालिए का दमन किया, यह किया वह किया,
ऐसे किया, कुछ भी नहीं बोल रहे थे। यदि कोई ऐसे बड़ा व्यक्ति पूछ दे किसी से कि आप क्या क्या किए हैं, तो आदमी तो बुद्धि लगाकर पूरा रिकॉर्ड करेगा, ये किया ये किया ये किया। उसे चुप कराना पड़ेगा, बस अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है सुनने का। लेकिन भगवान अति संक्षेप में अति नम्र भाषा में बोलते, इसको सील कहते हैं। और शुरू में जब देवकी वसुदेव कारागृह में थे और कृष्ण बलराम गए उनके पास, जो गोद में नहीं लिए ईश्वर समझ करके, तो भगवान ऐसी बात बोले कि पिताजी मैं ऐसा कर्म का मारा हुआ व्यक्ति हूं कि आपका प्रेम नहीं मिला, माँ का स्तन पीने को नहीं मिला, मुझे जन्म लेते ही मुझे दूर रहना पड़ा, और इसीलिए मैं आपकी सेवा नहीं कर सका, आप मेरी ही रक्षा के लिए मुझे दूर रखा है, अतः आपकी सेवा नहीं कर सका, अब हम लोग करेंगे, अब क्षमा कीजिए। मानो भगवान ये सोच रहे थे कि पिताजी गोद में नहीं ले रहे हैं हमारे किसी अपराध के कारण। तो कहते हैं कि जिस माता पिता ने शरीर को जन्म दिया, पाला पोसा, उसको कौन सी वस्तु दे करके उसके ऋण से मुक्त हुआ जा सकता है, तो हम लोग आपकी सेवा नहीं कर पाए, दैव के मारे हम लोग जहां तहां घूमते रहे, एक तो जान बचाना था छिप करके। इस तरह की बात बोलने से देवकी वसुदेव के चित्त में स्नेह की धारा उमड़ गई और तत्काल वो गोद में ले ली, मां देवकी दूध पिलाने लगी कृष्ण को उस समय। तो भगवान की लीलाओं में सील बहुत प्रकट हुआ है। रुक्मिणी जी एक एक बातों को लिख रहे हैं, कुल सील रूप, रूप की चर्चा हो गई, विद्या, विद्या में श्री कृष्ण आत्मतुल्य, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, इतना ज्ञानी, पढ़ा लिखा क्या हो तो स्वरूप से ही ज्ञानमय है। तो आत्मतुल्य, कुरुक्षेत्र के मैदान में उन्होंने कुछ बोल दिया श्लोक, वही भगवत गीता है, और उसके समान कौन ग्रंथ है, कोई नहीं है। थोड़े से शब्दों में और गुढ़ से गुढ़ तत्व का वर्णन जो भगवान ने किया है गीता में, इतने संक्षेप में इतना सुंदर वर्णन और कहीं नहीं मिलता है, और सब कुछ परफेक्ट है, सभी विद्वान इसका लोहा मानते हैं गीता का। यह श्री कृष्ण की विद्या है। अच्छा, ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण पढ़े लिखे तब विद्या प्राप्त हुई, जिस दिन प्रकट हुए जन्म लिए उसी दिन अपने माता पिता के भूत भविष्य वर्तमान सबको बताने लगे कि आप पूर्व जन्म में यह थे, ऐसे थे, ऐसे थे, मेरा भजन किए तो मैं आपका पुत्र बना, फिर पुत्र बना, तीसरी बार बना हूं, आप डरिए मत। और भगवान जिस दिन प्रकट हुए जन्म लिए उसी दिन माता पिता के पूर्व जन्म की बात बता रहे हैं। और इधर मनुष्य तो जन्म लेता है तो पूर्व जन्म की बात छोड़िए, अपने विषय में ये जानता नहीं है कि कौन घर में जन्म लिया हूं, पापा कौन है, मम्मी कौन है, बच्चे को मालूम रहता है, कुछ भी नहीं। कुछ दिन के बाद तब बताया जाता है तुम्हारे पिता का ये नाम है, सीखो, रटाया जाता है, तुम्हारी माँ का ये नाम है, ऐसा है वैसा है, तब कुछ सीख पाता है। हमारे यहां एक मकर संक्रांति का मेला होता है, खिचड़ी का मेला कहते हैं उसे, तो गांव के छोटे छोटे बच्चे जाते थे, मैं भी जाता था कई बार, तो देखा लोग बच्चों के पैकेट में उसका एड्रेस लिख कर डाल देते थे कि कहीं बच्चा खो गया तो दूसरे लोग पढ़ने वाले पढ़ करके उसको उठा करके उसको रखेंगे, उसको पता नहीं है, न उसको पढ़ने आता था, न जानकारी थी कि हमारा पिता कौन है, माँ कौन है, गांव कौन है, कुछ भी नहीं पता। तो प्राय लोग लिख लिख करके डाल देते थे, चाहे कमीज पर भी ऐसे लिख देते थे बाहर से कि इसके पिता का ये नाम है, गांव ये नाम है, तो कोई आदमी पढ़ करके और उसको उठा करके भूले भटके शिविर में डाल देता था। ये ज्ञान है मनुष्य का, तो अपने बारे में ही ज्ञान नहीं है कि किस गांव का हूं, किस पिता का पुत्र हूं, किस मां का पुत्र हूं, अपने विषय में कोई ज्ञान नहीं। और यह अज्ञान बहुत दिन तक चलता है। जन्म लेने से कितने वर्ष तक चलता होगा? 4 वर्ष चलता होगा ना? 4 वर्ष कर दो, 5 वर्ष भी भोदे लड़के होते हैं तो 5 वर्ष भी चलता है। कुछ पता ही नहीं लगता है कि कौन माँ है, कौन पिता, कहाँ गांव है, क्या है। लेकिन भगवान तो प्रकट हुए और बस सब कुछ बताने लगे। उनके सारे आभूषण, केश, वस्त्र सब स्वाभाविक थे। यह भगवान की विद्या है, क्योंकि वे नक्ष से सिख तक ज्ञान घन है, चिन्मय। श्री कृष्ण इस विषय में अपने समान आप ही हैं। विद्या और वय, यौवन, वयह का अर्थ है यौवन। श्री कृष्ण ऐसा लगता है कि आज ही जवानी में प्रवेश कर रहे हैं। नवजौवन, युवक नहीं है, यौवन में प्रवेश करते हैं। बस आज ही लगता है कि आज ही नव किशोर अवस्था से यौवन में प्रवेश कर रहे हैं, नित्य किशोर। यह भगवान का वयह है, नित्य किशोर। भगवान तो कभी बूढ़ा हो ही नहीं सकते, वो जवान भी अच्छा से नहीं होते, नित्य किशोर रहते हैं। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम, इसको नव यौवन कहते हैं, यौवन नहीं, नव यौवन, किशोर अवस्था, प्रस्फुटत यौवन, ऐसे कभी कभी कहा गया कि आज ही प्रवेश कर रहे हैं, प्रस्फुटत नव यौवन। वयह और द्रव्य, द्रव्य का अर्थ धाम। सारा जगत तो भगवान कृष्ण के अधिकार में है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यनि भिन्ना प्रकृति रस्त धाम। भगवान खुलम खुला कहते हैं कि सब मेरा है, ये मेरी प्रकृति है, मतलब मेरा है सब कुछ। जितना इस पृथ्वी में पेट्रोल है, सोना, चांदी, जो कुछ भी है, सब श्री कृष्ण का है। और वास्तव में श्री कृष्ण का है। लोग भले यूज करें, यहां से निकाल करके यहां गहना बनाओ, वहां बक्सा में डालो, लेकिन सब यही रह जाएगा। जिसका है उसी के पास रहेगा। एक तोला भी लेकर जा नहीं, एक ग्राम भी लेकर जा नहीं सकते। वो भले जमा कर ले सोना टनों, जहां तहां रख ले, रखा भर रहेगा, वो कुछ भी लेकर जा नहीं सकते। और भगवान तो छोड़ दिए हैं सब, भिख मंगे जिए खाए क्या कहें। उनको इतनी चिंता नहीं होती है कि ऐसा यूज कर रहे हैं, लेकिन है उनका। सारी भूमि, सारा जल, सारा वायु, आकाश, सब कुछ श्री कृष्ण का है। यह तो शास्त्रों में बारंबार बात आई है कि सब कुछ श्री कृष्ण का है। और इसके अलावा जो स्वर्ग में संपत्ति है या अपरव्योम में, अप्राकृत जगत में है, वो सब कुछ श्री कृष्ण का है। तो श्री कृष्ण के समान धनी केवल श्री कृष्ण है, आत्मतुल्य है, और कोई नहीं है इनके समान। अच्छा, और कोई नहीं है तो ये नहीं समझना चाहिए कि श्री कृष्ण के पास 100 रुपए है तो किसी के पास 95 है या 99 है, इस कारण से श्री कृष्ण अतुल्य है। नहीं, यदि श्री कृष्ण के पास मान लीजिए 100% धन है तो सारे जगत में सबका मिला करके वो 1% भी नहीं है, और सबका, और किसी के अधिकार में है भी तो नाम भर केवल पेपर पर है, वो सब कृष्ण का है। इधर उधर नाम होने से क्या होगा? मान लीजिए किसी आदमी का नाम पूरा किसी बैंक पर चढ़ा दिया, इसी का है, न एक पैसा निकाल सकता है न खा सकता है, तो नाम होने से क्या हुआ? नाम ही चल रहा है ना। कभी कभी आदमी बैंक में रुपया छोड़ करके चला जाता है, मर जाता है, भूमि छोड़ देता है, घर छोड़ देता है, चला जाता है। सब कुछ पर अधिकार कृष्ण का है। सब मृत्यु हर सर्व हरस चाहू, ये स्वामी है तो है। ऐसा नहीं कि बीच में मनुष्य मालिक हो गया और भगवान लाचार हो गए, क्या करें। नहीं, उनके ही अधिकार में है। वो तो पता चल जाता है, जब मरण होता है तो सर्वहरस चाहे सब ले लेते हैं, तो पता चलता है अरे तो पहले भी उन्हीं का था। तो क्या मरने से पहले वो नहीं हरने देंगे क्या कृष्ण को? वो तो उस समय भी उनका है, हमारे जन्म के पहले से ही था। सारे मनुष्य जाति के जन्म के पहले से धन है और सब मर जाएंगे फिर भी रहेगा, ये पृथ्वी रहेगी, सूरज रहेगा, हवा रहेगा और सोना चांदी जो बहुत दिन चलते हैं सब यहीं रह जाएंगे। भगवान के अधिकार में सब कुछ है। और यह तो उनकी भगवत्ता का वर्णन है, लेकिन श्री कृष्ण के लीला विलास समय जब लीला कर रहे थे उस समय भी भगवान ही सबसे धनी व्यक्ति इस पृथ्वी पर थे। अगर यह कहा जाए कि नहीं युधिष्ठिर धनी थे, यह थे वह थे, युधिष्ठिर आदि तो इनके चरणों के किंकर थे, वो सारा जगत भगवान के अधीन था, कृष्ण के सबसे धनी व्यक्ति थे। और ये द्रविड़ शब्द बता रहा है कि द्वारका का जो कोष था ट्रेजर वो सबसे धनी था, इंद्र आदि देवताओं का कोष उसके सामने कुछ भी नहीं था। प्रकट धन संचय की दृष्टि से भी बात कही जाती है, बहुत धनी भगवान कृष्ण। और धाम अभी रात्म तुल्यम, धाम, धाम का दो अर्थ है, धाम का अर्थ है प्रभाव अथवा घर, श्री कृष्ण जैसा घर किसी का नहीं था, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा सुंदर घर किसी का नहीं था। सुनते हैं आप लोगों ने सुना होगा भागवत में कि भगवान द्वारका में जिस सभा में बैठते थे उसका नाम था सुधर्मा सभा, उसमें बैठने पर शडूर्मिया नहीं सताती थी, उस सभा में बैठने पर प्यास नहीं लग सकती थी, भूख नहीं लगती थी, ऐसा नहीं कोई फिजिकल गड़बड़ी के कारण भूख नहीं लगती, उसे भूख नहीं लगती थी, प्यास नहीं लगती थी, शोक मोह उसमें नहीं होता था, सभा में बैठने पर किसी प्रकार की चिंता नहीं होती थी और किसी प्रकार का अज्ञान नहीं होता था कि मैं ये हूं मैं वो हूं। और उसमें लिखा गया है और जरा और मृत्यु नहीं होती थी। उस सभा में बैठने पर बुढ़ापा समाप्त हो जाती थी, इस सभा की ऐसी विशेषता थी। और कोई रोग नहीं, मरण नहीं, कुछ नहीं। इधर के सभा में तो फिर भी चाय घूमता रहता है ना, कुछ नहीं तो चाय घुमाओ, नहीं तो हालत बिगड़ रही है, पानी पिलाओ, ये पिलाओ, ये पिलाओ। और कभी कभी सभा हो रही है तब तक कोई मर जाता है, हार्ट अटैक कर जाता है, उसको निकालो ले जाओ। लेकिन द्वारका में इस प्रकार का भवन नहीं। तो भागवत में तो लिखा गया है कि जब भगवान मथुरा में आए ब्रज से, तो मथुरा के जितने भी वृद्ध लोग थे, पहले प्रवयस थे, वृद्ध हो गए थे, वे श्री कृष्ण को देख करके जवान हो गए फिर से, जुआनोति बलव जसो, युवक हो गए और अति बलव जैसा, अति बल बढ़ गया, सब सुंदर हो गए, युवक हो गए, केवल दर्शन करके भगवान का। थोड़ी सी देर लगी, कई दिन दर्शन करते करते धीरे धीरे जवान हो गए, भगवान के दर्शन में यह आनंद, इतना सुख होता था कि बुढ़ापा चली गई, शरीर का बल बढ़ गया, तो वृद्ध व्यक्ति भी युवक हो जाता था भगवान का दर्शन करके। उस सभा में बैठते थे तो उसमें शोक मोह भूख प्यास जरा मरण ये सब नहीं होते थे। तो रुक्मिणी जी कह रहे हैं कि घर की दृष्टि से, चाहे सौंदर्य की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, विद्या की दृष्टि से, कुल की दृष्टि से, हे प्रियतम आप अपने ही समान हैं। तो यदि किसी कन्या के विवाह का अवसर हो और कन्या कुलवती, धीरा और महती, तीन विशेषणों से युक्त हो, यदि वह विशिष्ट कुल में जन्म ली है और गुणों में महान है तथा धैर्य है और विवाह का अवसर है काले, तो हे नृसिंह है मनुष्यों में श्रेष्ठ, ऐसी कौन सी कन्या है जो ऐसे अवसर पर आपका ही वरण नहीं करेगी। मैंने जो आपका वरण किया है बिल्कुल स्वाभाविक किया है, और कोई भी लड़की यही करेगी यदि आपके विषय में सुन लेगी। विवाह का अवसर हो, विवाह के योग्य हो गई हो और उच्च कुल में जन्म भी हो, धैर्यवती हो, महती हो, तो कौन ऐसी कन्या है जो आपको ही अपने पति के रूप में वरण नहीं करेगी। मैंने जो किया है यह मेरी धृष्टता नहीं है, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। आपके गुणों के अनुसार आप ही हमारे पति हैं। मैंने आपका जो वरण किया है आपके गुणों को देख करके वरण किया है, ये धृष्टता नहीं है। धृष्टता तो तब मानी जाती जब मैं ही यह केवल कार्य करती, नहीं कोई भी करने यही करेगी यदि वो महती है। महती से मतलब कुछ बुद्धिमती है, समझदार है, तो आपको ही अपना पति मानेगी सुनेगी। इस तरह से रुक्मिणी जी अपने पत्र में से बातें कह रही हैं। तो शेष श्लोकों की व्याख्या मैं कल करूंगा। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।